सर्व कला समरथ डोलन ते राखो प्रभु नानक दे करहत ज्ञान ध्यान किछ कर्म न जाना सार न जाना तेरी सब ते वड़ा सतगुर नानक जिन कल राखी मेरी बेसुमार अथाह अगनत अतोलै ज्यों बुलावो त्यों नानक दास बोलै। दसों पातशाहियों के ज्योत स्वरूप कलयुग के जहाज शब्द गुरु साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज के चरणों में उपस्थित गुरु के साजी निवाजी साध संगत जी गज के आखो वाहे गुरु जी का खालसा वाहे गुरु जी की फतेह। गुर कृपा जह नरको कीनी तेह एह जुगत पछानी नानक लीन भयो गोविंद सियों ज्यों पानी संग पानी। साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज जो के हमारे शब्द गुरु हैं और दसों पातशाहियां की ज्योत इसमें समाहित है, जैसा कि गुरु महाराज स्वयं हमें उपदेश करते हैं, जो मांगह ठाकुर अपने ते सोई सोई देवे। जो मनुष्य जिस भावना से गुरु महाराज के चरणों में आकर मांग करता है, गुरु महाराज उनकी आवश्यकताओं को पूरा करते हैं। लेकिन साध संगत जी, हमें ये भी देखना है कि हमें गुरु चरणों में क्या मांगना है। यदि कोई व्यक्ति समुद्र के पास जाकर एक चम्मच ले जाए और कहे मुझे एक चम्मच पानी चाहिए, तो उसको कौन सियाना कहेगा? मनुष्य की मांग भी कुछ ऐसी ही है। हम जो सारे ब्रह्मांड के मालिक साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी के महाराज के चरणों में हम मांगते क्या हैं? मेरा पुत्र हो जाए, मेरा व्यापार चलने लग जाए, मेरा रोग ठीक हो जाए, एक चम्मच पानी। लख 84 जून विच मानुख जन्म दुर्लभ हो पाया है। ये जो मनुष्य शरीर है ये बहुत ही दुर्लभ है, आसानी से नहीं मिला है। तीन चीजों को दुर्लभ बताया है महापुरुषों ने, दुर्लभम त्रयमेवैतद् देवा अनुग्रह हेतुकम मनुष्यत्व मुमुक्षुत्व महापुरुष संश्रय, ऐसा आदिगुरु शंकराचार्य कहते हैं के तीन चीजें दुर्लभ हैं। एक मनुष्य शरीर, और मनुष्य शरीर पाकर सत्य की प्यास, और सत्य की प्यास कहां बुझनी है? कौन हमें उस सत्य तक ले जाएगा, उसके लिए किसी संत किसी महापुरुष का शरण। जैसा कि गुरुवाणी में आया है, नह शीतलंग बावन चंदन, नह शीतलंग शीत रुतेन, नह शीतलंग बावन चंदन। यूं तो 52 प्रकार के जो चंदन हैं उसकी शीतलता प्रसिद्ध है, मस्तक पर लगाओ शीतलता प्रदान होता है, और ठंडा का जो मौसम है ये भी शीतलता प्रदान करता है। नह शीतलंग चंद्र देव है, और चंद्रमा की शीतलता, क्योंकि जितने भी फलों में जो रस पैदा होता है वो चंद्रमा से होता है और सूर्य उसको पकाता है, तो चंद्रमा की शीतलता, चंदन की शीतलता, सर्द ऋतु की शीतलता प्रसिद्ध है, लेकिन उसकी एक सीमा है। लेकिन गुरु महाराज हमें उपदेश कर रहे हैं, नानक शीतलंग साध स्वजन। कोई ऐसा महापुरुष, कोई जन हर्ष्यों देवे जोर, जिसके बारे में ईरान का एक सूफी संत बताते हैं कि सुरमा कुंतो खाक औलिया इब्तदाता इंतहा। यदि तू ये चाहता है कि मौत से पहले पहले उस वाहिगुरु का दीदार कर ले, इस जीवन को सफल कर ले, तो सुरमा कुंतो खाक औलिया, किसी औलिया किसी फकीर फकीर जो रब से जुड़ा हुआ है, जैसे आदरणीय बाबा जी जुड़े हुए हैं, ऐसे महापुरुषों के चरणों की तू खाक हो जाए। नानक शीतलंग साध स्वजन, तीन चीजें दुर्लभ है, मनुष्यत्व मुमुक्षुत्व महापुरुष संश्रेय। एक प्यास अंदर, एक प्यास पैदा हो जाए सत्य की, और उसके लिए जो भी दाव में लगाना पड़ जाए कोई बात नहीं, क्योंकि ये शरीर क्षणभंगुर है, तुम चाहो या ना चाहो ये नाश हो जाना है और हो रहा है, प्रतिक्षण हो रहा है। जननी जानत सुत बड़ा होत है, मां सोचती है कि बच्चा बड़ा हो रहा है, सच्चाई ये है कि मनुष्य एक एक क्षण मर रहा है, टोटल आयु से उम्र घट रही है। जननी जानत सुत बड़ा होत है, इतना को ना जाने जे दिन दिन औध घटत है। तो सभी लोग जब मौत के मुंह में जा रहे हैं, तो ये मरणशील शरीर से, नाशवान शरीर से अविनाशी वाहिगुरु मिल जाए तो और सस्ता सौदा क्या है। तन मन धन सब सौंप गुरु को, हुक्म मणिये पाइए, हुक्मे अंदर सबको बाहर हुक्म ना कोई। मनुष्यत्वम मुमुक्षुत्वम, ये मनुष्य शरीर पा करके एक प्यास पैदा हो जाए सत्य की, और सत्य 2, 4, 10 नहीं है, सत्य तो एक ओंकार सतनाम। जितने भी परमात्मा के नाम हैं वो अवतारों ने, भक्तों ने, महापुरुषों ने अपनी भावना के अनुसार दिए हैं। कोई उनको विठल कहता है, कोई अल्लाह कहता है, कोई गोविंद कहता है, कोई राम कहता है, कोई वाहिगुरु कहता है। और गुरु गोविंद सिंह जी महाराज ने तो बहुत से नाम बताए हैं जाप साहिब में, और एक दो जगह तो ये भी कह दिए वो अनाम है, वो अनाम है, उसका कोई नाम ही नहीं। यूं तो वाहिगुरु का कोई नाम है, नाम और रूप से रहित है, फिर भी भक्त भावना से जो नाम दे दे वाहेगुरु उसको स्वीकार कर लेते हैं। अनाम होता हुआ भी जिस भावना से, जिस रूप में उसको कोई याद कर ले, वो तुम्हारी भावना, तुम्हारा प्रेम, तुम्हारी अंदर की पुकार को वो सुन लेता है। तो साध संगत जी, कौन सी ऐसी विधि, कौन सा ऐसा तरीका, कौन सी ऐसी युक्ति अपनाई जाए जो हमें सत्य का दर्शन हो जाए, सत्य का साक्षात्कार हो जाए। वो युक्ति क्या है, वो जीवन में बेखुदी और हलीमी। बेखुदी का भाव ये है कि अहंकार से रहित होना, कि मैं नहीं हूं, मैं नहीं हूं, गुरु के चरणों में मिट जाना, और नम्रता। और ये दोनों चीजें हमने बाबा जी में प्रत्यक्ष देखते हैं। एक समय की बात है, एक फकीर हुआ है इब्राहिम। वह एक विशेष प्रकार का नमाज पढ़ता है और वह बसरे से मक्का जब जा रहा है तो हर एक कदम पर नमाज पढ़ता है, फिर एक कदम चलता है। उसको 14 वर्ष लगा और जब मक्का पहुंचा उसने तो देखता है कि मक्का है नहीं यहां। वो कभी आंख बंद करता है, कभी आंख खोलता है, वो सोचता है शायद मेरे आंख में ना कोई फर्क पड़ गया हो। आकाशवाणी हुई, इब्राहिम तुम्हारे आंख में कोई फर्क नहीं पड़ा है, हमने कोई वाहे गुरु से जुड़े हैं, अल्लाह ताला से उसके स्वागत के लिए मैं गया हुआ हूं। इब्राहिम सोचता है कि मैं हर एक कदम पर नमाज पढ़ के अदा करके 14 साल लगा करके मैं दर्शन के लिए आया, और कौन ऐसा भक्त है, कौन ऐसा प्रभु का प्यारा है जिसके स्वागत के लिए मक्का गया हो। कुछ समय के बाद इब्राहिम क्या देखता है कि एक बुजुर्ग बूढ़ी औरत आ रही है। इब्राहिम ने पूछा, तुम कौन हो? वो कहती है, मैं राबिया हूं। और आकाशवाणी ये भी हुआ था कि मैं राबिया को स्वागत के लिए जा रहा हूं। इब्राहिम पूछता है कि तुम्हारे अंदर क्या राज है भक्ति का, जिसके कारण मक्का तुमको स्वागत के लिए गया है, जबकि मैंने कदम कदम पर 14 वर्ष तक रात दिन नमाज पढ़ता हुआ, इबादत करता हुआ हम यहां आए। वहां पर राबिया कहती है, ऐ इब्राहिम, जिसके दर्शन के लिए, जिसके दीदार के लिए तू आया है, उसका दर्शन, उसका दीदार हमने हलीमी और बेखुदी से पाया है। मिटा दे अपनी हस्ती को, अगर कुछ मर्तबा चाहे कि दाना खाक में मिलकर गुले गुलजार होता है। दाना पहले मिट्टी में अपने को समाप्त करता है, फिर पौधा उगता है। पिछले साल आदरणीय बाबा जी का अदास दर्शन किया और बाबा जी सुमत दे रहे थे मुझे कि स्वामी जी, यह जो मार्ग है इसमें मिटने के अलावे और कोई रास्ता नहीं है उसे पाने का, उसका अनुभव करने का। और ये दास, इनकी जो शिक्षा है वो अपने हृदय में कोशिश करता है वैसा बनने का। साध संग जी, साहेब श्री गुरु नानक देव जी महाराज हमें उपदेश कर रहे हैं कि वो सचियारा होइए, कि वो कूड़े तुटे पाल, हुकम रजाई चलना नानक लिखिया नाल, कि वो सचियारा होइए। हमें ये देखना है कि जिसको हम पाने के लिए चले हैं, पाना क्या है? पाना सिर्फ ये है कि दुख कोई नहीं चाहता है, सुख सारे चाहते हैं। कुछ भी कर ले, पढ़ाई कर ले, शादी कर ले, तलाक ले ले, फिर शादी कर ले, संत बन जाए, बड़ा पद को पा ले, साधु बन जाए, जो भी कर ले, अंत में यही व्यक्ति चाहता है कि मैं सदा सुखी रहूं, आनंदित रहूं, दुख मुझको कभी ना मिले। और वाहेगुरु को भी हम क्यों चाहते हैं? इसीलिए कि वो आनंद स्वरूप है, उसमें दुख का कोई लेस नहीं है। सनत कुमार नारद जी को उपदेश करते हैं, नारद यो वै भूमा तत् सुखम न अल्पे सुखम अस्ति। वो जो नारायण है वाहेगुरु, वो सुख स्वरूप है, परम सुख स्वरूप है। और गुरबानी में भी आया है, जो सुख को चाहे सदा सदा सुख। थोड़ा बहुत तो खाने पीने, थोड़ा मान दे दे तो फूल जाते हैं, लेकिन जिसको सदा सुख चाहिए, जिसका कभी नाश नहीं होता, भावे बंद बंद काटा जाए, भावे सिर पर रेता डाला जाए, भावे चरखड़ियां ते चढ़ना पड़े, भावे किल ठोकी जाए, भावे जहर पीना पड़े मीरा की तरह, फिर भी दुख ना हो, वो कब हो सकता है? जब जीते जी ये ज्ञान हो जाए कि मैं शरीर नहीं हूं, मैं इंद्रियां नहीं हूं, मैं मन नहीं हूं, मैं बुद्धि नहीं हूं, इस देही में कोई जागत रहे, इस शरीर के अंदर जो ज्योत है, और सिर्फ इस शरीर में नहीं, सारे शरीरों में, सब में ज्योत, ज्योत है सोए तिसदय चानन, सब में चानन होए। कोई भी व्यक्ति कम नहीं है, प्रत्येक व्यक्ति के अंदर पॉसिबिलिटी है कि वो परमात्मा हो जाए, ये पॉसिबिलिटी है। और वो पॉसिबिलिटी तब पूरा होता है जब हम अपने को वाहेगुरु के चरणों में समर्पित हो जाएं। जैसे एक बूंद सागर में समर्पित हो जाए तो वो सागर हो जाता है, लेकिन बूंद चाहे मैं सागर को उठा लूं तो कैसे उठाएगा? परमात्मा को हम वस्तु की तरह, दृश्य की तरह, रूप की तरह दर्शन नहीं कर सकते, लेकिन ये अवश्य है कि जो उसको खोजने के लिए जाता है, लौट के नहीं आता, वही हो जाता है। वेद का एक मंत्र है, तद अपश्यत तद भवत तदासीत। जो उसका उसको दर्शन करता है फिर वही हो जाता है, लौट के नहीं आता। तू तू करता तू भया, मुझ में रहा ना हो, आपा परका मिट गया, जित देखा तित तू। और वह कोई भी व्यक्ति हो, जब तक व्यक्ति नम्रता, हलीमी और अहंकार से रहित नहीं होता, तब तक वो पद नहीं प्राप्त हो सकता। एक समय की बात है, एक सैयद जानी साहब हुआ है, उसने साहेब गुरु नानक देव जी की महिमा को सुना और सत्य की खोज में निकल पड़ा। कोई जन हर्ष्यों देवे जोर। उसको ये पता चला कि साहेब श्री गुरु नानक देव जी महाराज की ज्योत इस वक्त साहेब श्री हरगोविंद साहेब जी महाराज हैं, तो उनके चरणों में आया। साहेब श्री गुरु हरगोविंद साहेब जी महाराज उस वेले संगत को उपदेश कर रहे थे, परमात्मा से जोड़ रहे थे। वहां पर बहुत मस्ताना होकर के जानी साहब कहता है, जानी को कोई जानी से मिला दे, जानी को कोई जानी से मिला दे, ऐसे पागल की तरह। साहेब श्री हरगोविंद साहेब जी महाराज एक दिन दो दिन परवाह नहीं किए। बहुत से सिखों ने आके कहा, महाराज एक फकीर आया है और वो कहता है जानी को जानी से मिला दे। कहते नो प्रॉब्लम, अलाप करने दो। तीसरे दिन गुरु हरगोविंद साहिब जी महाराज कहते हैं जाओ उसके पास एक टोकरा सोने चांदी हीरे जवाहरात के लेकर के जाके दे दो उसको। जब जानी शाह के पास ले गया तो जानी शाह कहता है कि मुझे ये नहीं चाहिए, कंचन स्यो पाइए नहीं तो मंदे राम लिया है मोर। कहता है कि मुझे ये नहीं चाहिए, मुझे तो वो चाहिए जिसके मिलने से द्वैत मिट जाता है। हमें तो साहेब श्री गुरु हरगोविंद साहेब जी महाराज का चरणों की धूल चाहिए, खाक चाहिए, हमें कुछ भी नहीं चाहिए। गुरु महाराज ने हुक्म किए कि यदि तू मेरा दर्शन चाहता है तो एक सिख को बोले के जाके बोलो कि जो दरिया ठाठा मार रहा है उसमें जाकर के छाल मार दे। साथ संगत जी जानी साह सोचा नहीं विचारा नहीं, सोचने विचारने वाला पीछे रह जाता है। समर्पण, व्यापारी लोग इसको नहीं पाते, तो जुआड़ियों का काम है जो दाव पर लगाने को तैयार है, मस्तानों का काम है ये। वो तुरंत जो है विचारा कुछ नहीं और जाकर के छाल मार दिया नदी में। गुरु महाराज किसी ने सिख को बुला के उसको बचा के लिया। जब लेके आया गुरु महाराज ने उसके मस्तक के ऊपर प्यार दिए, अपने छाती से लगाए और नानक नदरी नदर निहाल, वहीं पर महाप्रकाश हुआ। जो जन्म जन्मांतरों का अंधकार था उसका दूर हो गया। और अब जानी साह दोबारा नाचने लग पड़ा, कहता है जानी को जानी मिल गया, जानी को जानी मिल गया, जानी को जाने मिल गया। क्या यह दशा हमारी आपकी नहीं हो सकती? भक्त कबीर जुलाहा है और ये पा लिया, भक्त नामदेव कपड़े रंगने वाला पा सकता है, धना जट पा सकता है, जूता सीने वाला पा सकता है, हमारे आप में क्या कमी है? एक संकल्प की कमी है, संकल्प और समर्पण। पहले तो हम किसी महापुरुष जिस मिलिए मन होए आनंद सो सतगुरु कहिए, कोई ऐसा महापुरुष जो हमें गुरु से जोड़ दे, वाहे गुरु से जोड़ दे, उसके चरणों की खाक बनना पड़ेगा। सात संग जी किव सचियारा होइए, किव कूड़े तुटे पाल, हुकम रजाई चलना नानक निख्याना। 24 घंटा जैसी भी परिस्थिति हो, जब राज देह ता कवन बढ़ाई, जब भीख मंगावे तो क्या कर जाए। टोटल एक्सेप्टेबिलिटी, प्रत्येक क्षण अवेयरनेस, ये होश बना रहे कि जो भी कुछ हो रहा है हुक्म अंदर सबको बाहर हुक्म ना कोई, सब उसके हुक्म से, कोई किंतु नहीं, किसी प्रकार का हमें कोई ब्लेम नहीं देना वाहेगुरु को, कोई किंतु नहीं। किंतु किस बात की? जब एक पत्ता नहीं हिल सकता उसके हुक्म के बगैर, लेकिन मैं लोगों को देखता हूं जाते हैं गुरुद्वारे, जाते हैं मंदिर और शिकायत ही शिकायत, हाथ जोड़ते हैं और शिकायत ही शिकायत, शिकायत ही शिकायत। कहते हैं महाराजा रंजीत सिंह जी का एक आंख खराब था, उन्होंने राज्य में घोषणा किए कि कोई मेरी आंख को ठीक कर दे, अपनी आंख मुझे मेरे आंखों में फिट कर दे और आंख दूसरे जैसा हो जाए तो मैं उसको आधा राज्य दे दूंगा। आप बताओ ये जो प्रभु ने तुम्हें दिया उसके एक एक अंग का कितना कीमत है? लेकिन सुबह से शाम तक कोसते रहना कुछ नहीं, काल ही कर्म ही ईश्वर ही मिथ्या दोष लगाई। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं काल को दोष देते हैं, कर्मों को दोष देते हैं, लेकिन सात संग जी अहकर करे सो अहकर पाए। जो हम करते हैं वही हमें प्राप्त होता है। जेहा बीजे सो लुणे कर्मा संदड़ा खेत। इस संसार में सुबह से शाम तक और सारी जिंदगी जहां जहां से सुख मिलता है, जहां जहां से मान मिलता है, जहां जहां से दुख मिलता है, जहां जहां से अपमान मिलता है, उसमें तुम्हारे कर्मों का ही फल है। ना कोई किसी को सुख देता है, ना कोई किसी को दुख देता है। जेहा बीजे सोलो ने कर्मा संदड़ा खेत। जब गीता पाइए आपना सा घाल बुरी क्यों घालिए, ये मेरे साथ ऐसा किया, ये मेरे साथ ऐसा। इसलिए टोटल एक्सेप्टेबिलिटी, कोई ब्लेम नहीं वाहेगुरु को। हे वाहेगुरु, हमें स्वीकार है सुबह से शाम तक, और जो उसके हुक्म में रहता है उसको एक एक क्षण प्रभु की मेहर, प्रभु की कृपा, प्रभु का जलवा जो है सो उसको प्रतीत होता है। सर सत्संग जी, ये जरूरी नहीं कि वाहेगुरु का दीदार राजाओं को होता है, कोई जरूरी नहीं। और कोई जरूरी नहीं कि जिसके पास पैसे नहीं उसके नहीं होता। साहेब श्री हरगोविंद साहेब जी महाराज एक समय जहांगीर के साथ आगरा में हैं और दो तंबू लगा हुआ है, एक में गुरु महाराज हैं और एक में जहांगीर है। एक घाही घा खोदने वाला सुबह से शाम तक घास को इकट्ठा करता है और बेचता है, और गुरु गुरु जाप करता है। उसको किसी महापुरुष ने कह गया था कि तू कीर्त कर और नाम जप, जो कि गुरमत का मेन आधार है, कीर्त करना, वर्ण छकना, नाम जपना। वो यही करता था, उसने यही मंत्र पढ़ रखा था, और उसमें से जो थोड़ा बहुत बचता था लोगों को दान देता। आज पता चला कि साहिब श्री हरगोविंद साहिब जी महाराज जिनकी मैं आराधना करता हूँ वो यहाँ आए हैं दर्शन देने के लिए। वो विचार करता है हम गुरु साहब के दर्शन के लिए, दर्शन भेटा क्या देखें, देखता मेरे पास तो कुछ है नहीं। उसने क्या किया कि दूसरे दिन सोचा कि शाम को एक रुपया मिलता है सारा घास बेचने के बाद, तो आज रोटी नहीं खाएंगे, और वही रुपया ले करके गया और वहां पर लोगों से पूछा कि मैंने सच्चे पातशाह का दर्शन करना है। तो वहां पर एक जो दरबारी था उसने जहांगीर के तंबू में उसको ले गया, तो ये सच्चे पातशाह। उसने जा करके एक जो रुपया था जो मिला था घास बेच करके चरणों में रखा, परिक्रमा किया और चरणों में गिर करके कहता, सच्चे पातशाह हम बहुत भाग्यशाली हैं जो आपका दर्शन प्राप्त हुआ है, हमारे लिए जो हुक्म हो आप करें। और ये जो जन्म मरण की, जो बार बार जन्मना, बार बार मरना, बार बार माँ के गर्भ में पुठे लटकना, आप कृपा करके हमें इससे निकाल दो। जहांगीर सोचता है कि इसने तो जाना था महाराज के पास, ये आ गया मेरे पास, अब इसको क्या किया। वो कहता है कि देखो कि तुम्हें धन चाहिए, दौलत चाहिए, गांव चाहिए, मैं देने को तैयार हूं, लेकिन ये मांग तू छोड़ दे। कहता नहीं। उसको पता चल गया कि ये जो है ये सच्चे पातशाह दूसरे तंबू में बैठे हैं। उसने वो रुपया उठाने लगा, जहांगीर बेइज्जती समझता है, कहता है देखो वो रुपया रहने दो, उसके बदले तुम्हें सोने की मोहरे दे देता हूं थैली। कहते नहीं, मुझे तो वो रुपया चाहिए। कहते मैं तुमको आधा राज्य दे देता हूं। कहते मुझे वो नहीं चाहिए। उसने वो रुपया उठाया और गुरु महाराज के चरणों में दूसरे तंबू में गया, रख करके मथा टेकता है। गुरु महाराज उठ करके उस रुपये को छाती से लगाते हैं, माथे से चूमते हैं। सत्संग जी जरूरी नहीं कि बहुत जो ज्यादा धन देता है गुरु महाराज उसी को देखते हैं, सिर्फ तुम्हारी भावना। भावना विहीन नर पावे कैसे जगदीश को, भोले भाई मिले रघुराया, चतुराई ना चतुर्भुज पाइए। और गुरु महाराज उसको अपने छाती से लगाए, नानक नदिर नदर निहाल, और उसको दीदार हुआ। दो मार्ग हैं, एक भक्ति मार्ग और दूसरा ज्ञान मार्ग। भक्ति मार्ग में तो मिटना और प्रेम, साच कहो सुन ले हो सबै, जिन प्रेम कियो तिन ही प्रभु पाए। वाहे गुरु की छवि, वाहे गुरु की मूर्ति हर एक में दर्शन करना, सब में जोत जोत है सोए। जो इष्ट है गुरु महाराज, वो सब जगह उसी की छवि, उसी का रूप का दर्शन करना, ये भक्ति है। अपने प्यारे को आजर नाजर देख करके जानना, ये भक्ति है। अपने को सौंप देना, भक्ति का बीज है प्रेम और ब्रह्म ज्ञान का बीज है वैराग्य। नारद जी कहते हैं, भक्ति अर्थात परम प्रेम स्वरूपाच। भक्ति देखना हो तो मीरा को देखो। मीरा कहती है, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो ना कोई। कितना तसीहा दिया गया उसको। भक्त प्रह्लाद को देखो, उसको पहाड़ से गिराया गया, अग्नि में डाला गया, सो मेनी प्रॉब्लम्स उसको आया, लेकिन नहीं। भक्त प्रवाह नहीं करता, ना शरीर का करता है, ना चीजों का करता है, वो तो अपना जो इष्ट है उसके लिए मतवाला होता है, सब में उसी का दीदार करता, अपने इष्ट का करता है। कहते हैं जब मीरा श्याम को पुकारते पुकारते वृंदावन गई और मंदिर में प्रवेश करने लगी वो, तो जो पुजारी है वो कहता है कि तुम स्त्री हो, तुम अंदर नहीं जा सकते। मीरा कहती है कि पुरुष तो एक वाहिगुरु है, तो दूसरा पुरुष कहां से आ गया? इस ब्रह्मांड में सारे जीव रूपी स्त्रियां हैं, तो दूसरा पुरुष कहां से आ गया? तो पासेरा। और कहते हैं साध संगत जी, मीरा गई अंदर और भगवान कृष्ण की मूर्ति के साथ आलिंगन की लिपटी और उसी में समा गई, जीते जी समा गई, तो लौट के नहीं आई। भक्ति की पराकाष्ठा हो, ऊंचाई हो, तो प्रकृति अपना स्वभाव बदल देता है। जैसे कहते हैं ना कि जब साहेब श्री गुरु नानक देव जी महाराज इस दुनिया से विदा होने लगे शरीर करके, तो कहते हैं शरीर रहा नहीं, दो फूल बचा, और एक फूल को मुसलमान ले गए, एक हिंदू रख ले। प्रकृति भी अपना स्वभाव बदलता है। दूसरा मार्ग है ज्ञान, ब्रह्म ज्ञान। ब्रह्म ज्ञान में वैराग्य आवश्यक है। वैराग्य कैसा? कि ज्योतन उपजिया संग ही सोभी साथ ना होया। जिस शरीर को हम अपना समझे हैं वो भी साथ नहीं जाना है। तो शरीर करके कोई भाई है, शरीर करके कोई पिता है, शरीर करके कोई माँ है, सारा संबंध शरीर करके है। तो जब शरीर ही साथ नहीं जाना है तो और कौन जाना है? कतन च माता, कतन च पिता, कतन च बनिता बिनोद सुता, गुरु अर्जन देव जी महाराज। क्या है? सिर्फ पूर्व जन्म के मिले संयोगी, अंतह को न सहाय। ये सब एक एक जो है सिर्फ संयोग के कारण, एक ये समझो ये सराय है सारा, ये जगत सराय से ज्यादा नहीं। एक बार एक फकीर जा रहा है, अचानक बारिश होने लगी, वो भींग के भींग ना जाऊं उसके लिए वो एक महल था उसमें चला गया। साध संगत जी जब वो महल के अंदर गया, जो चपरासी था वो कहता है तुमको दिखता नहीं कि ये महल है, तुम इसके अंदर आ गए हो। उसको पकड़ करके राजा के पास ले गया। वो राजा का नाम इब्राहिम था। कहता है कि जहां पनाह, ये फकीर अंदर आ गया और कहता ये तो सराय है, इसको थोड़ा दंड देना चाहिए। इब्राहिम कहता है कि तुमको दिखता नहीं इतना सारा कुछ शान शौकत ये महल है। कहता है मुझे ये बताओ कि मैं पहले भी आया था तो यहां कोई और बैठा था, वो कौन था? कहता है वो हमारे पिताजी थे। कहते हैं उसके पहले भी आया था तो कौन था यहां? कहते हैं हमारे वो दादाजी थे। कहते हैं तुम नहीं रहोगे तो यहां कौन बैठेगा? कहते मेरा जो लड़का है वो बैठेगा। कहते हैं जहां बदलते रहता है, जो जगह आते जाते रहते हैं, उस जगह तो सराई कहते हैं, उसको महल तो नहीं कहते। कहते हैं इब्राहिम उसी वक्त राज्यपाट को छोड़ दिया और मस्ताना सब कुछ छोड़ करके एक फकीर हो गया और फकीर होकर के चला गया जंगल में। एक गुफा में 14 वर्ष तक जाकर के उसने भक्ति की। कभी कभी तो बर्फ का जो है, बर्फ को खा करके रहता था, कभी पत्ते को खा करके। ये जो सत्य की प्यास ऐसी है, लगाई तो लगती नहीं है और लग जाए तो फिर छूटती भी नहीं है। तो जिसके ऊपर वाहिगुरु की कृपा हो या किसी संत महापुरुष की नजर उसके ऊपर पड़ जाए, वही है मरकजे काबा, वही राहे बुतखाना, जहां दीवाने दो बैठ के सनम की बात करते हैं। एकांत में बैठकर जब भक्त भगवान से बातचीत करता है, प्रेम की बातें करता है, वो कैसा अवसर होता होगा, कितना सुंदर अवस्था होगी। वो जो भक्त ऐसा करते हैं बातचीत, उसको पता है। साध संगत जी इब्राहिम जो है सब कुछ छोड़ करके फकीर बन करके उस अवस्था को उसने पाया। कहते हैं एक बार हसन नाम का एक फकीर राबिया के साथ हंसी करते करते, हसन कहता है उसने अपना चादर निकाला और पानी था उसके ऊपर फेंक दिया, उस पर तैरने लगा और कहता है हसन राबिया चलो हम दोनों इसके ऊपर बैठ के नमाज पढ़ते हैं। राबिया ने अपना चादर ऐसे बाहर फेंका, वो आकाश में तैरने लगा। राबिया कहती है कि चलो इस चादर पर बैठ के हम नमाज पढ़ते हैं। हसन हैरान हो गया कि ये शक्ति तो मेरे अंदर है ना कि हवा में हम टिका दें और इसके ऊपर बैठ के नमाज पढ़े। फिर राबिया कहती है हसन जो तुमने किया है वो तो एक मछली करती है, मछली तैरती रहती है पानी में, और जो हमने चादर को आकाश में रख दिया जो स्थिर हो गए तो मक्खी भी करता है। इन बातों को तू छोड़ और सुरमा कुंतो खाक ओलिया, किसी महापुरुष के चरणों में खाक हो जा। होमे नावे नाल विरोध है, दो ना बस एक ठाए, या तो अहंकार रहेगा या वाहेगुरु का नाम होगा। वाहेगुरु के नाम का सुमरण का भाव ये है कि अपने को मिटा देना। ब्रह्म ज्ञान में वैराग्य, वैराग्य क्या कि ज्योतन उपजिया संग ही सोभी साथ ना होया, कि जब ये शरीर साथ नहीं जाना है तो और क्या साथ जाना है। चित्त में ऑलवेज वैराग्य और साथ संगत जी, जैसा कि गुरु महाराज उपदेश कर रहे हैं कि हम बाहर खोजने के लिए जाते हैं तो कहाँ खोजेंगे, इतना बड़ा ब्रह्मांड। कहते हैं वैज्ञानिक लोगों ने अभी 3 करोड़ सूरज का पता लगा चुका है, 3 करोड़ सूरज। और एक सूर्य इस पृथ्वी से, जो पूरा पृथ्वी है, इसे 60,000 गुना बड़ा है। आप विचार करो, ये जो पहाड़, जितनी नदियां, जो पूरा पृथ्वी है, इससे 60,000 गुना बड़ा है थाली जैसा जो सूर्य लगता है, और 3 करोड़ सूर्य का पता लगा चुका। वैज्ञानिक ये भी कहते हैं कि रोज 1-2 सूर्य पैदा होते रहता है और नष्ट होते रहता है। तो इतने बड़े ब्रह्मांड में तुम कहाँ जाओगे खोजना? छोटी सी आयु 10-20-50-60 साल, वो भी जरूरी नहीं 10-20-50 साल। हमने तो देखा है घर में ही बच्चे मर जाते हैं, बाहर होके किसी भी उम्र में, किसी भी परिस्थिति में, किसी बहाने से मनुष्य मर सकता है। जरूरी नहीं उसका कि 70-80 साल में ही जाकर मरे, बहाना होता है और आदमी चला जाता है। एक कल्पना के हम पहले सेट हो जाएं, बच्चे को सेट कर दें, पोतरे का मुंह देख लें, क्या पागलपन है। पोतरे के मुंह देखने के लिए आए हो? गुरु महाराज कह रहे हैं, भाई परापत मानुख देहुरिया, गोविंद मिलन की यह तेरी बरिया, अवर काज तेरे कित ना काम। तुम डॉक्टर हो, तुम प्रोफेसर हो, तुम बहुत बड़ा बिजनेसमैन हो, बहुत बड़े लीडर हो, अवर काज, ये काम कित ना काम। काम क्या है? मिल साध संगत भज केवल नाम। उन लोगों का संगत करो जो सत्य के मार्ग में चल रहे हैं। इसीलिए तो बुद्ध ने 3 बातें कहे हैं, बुद्धम शरणम गच्छामि। जो इनलाइटेंड पर्सन है, जिसने उसको पा लिया है, उसके शरण में जाओ। बुद्धम शरणम गच्छामि, धम्मम शरणम गच्छामि, धर्म की शरण में जाओ। धर्म क्या है? जिसके धारण करने से मनुष्य को सत्य का दीदार हो जाए, जिस मार्ग पर चल करके मनुष्य स्वयं आनंदित हो, आप जपह अवरह नाम जपावे, वो धर्म है। और संघम शरणम गच्छामि, संघम शरणम गच्छामि का भाव ये है, हम उसके शरण में जाएं जो सत्य को खोज कर रहे हैं। ये जो 7 संगत उन्होंने ये बताए, 7 संगत जी ज्ञान का मार्ग, जैसा कि गुरु महाराज उपदेश कर रहे हैं, फल कारण फूली बनराए, फल लागाता फूल विलाए, ज्ञान कारण करत अभ्यास, ज्ञान भयाता कर्म नाश। फूल लगने पर हमें बहुत सुंदर लगता है फूल को देख करके, लेकिन जो ही उसमें फल लगता है तो फूल समाप्त हो जाता है, मुरझा जाता है। जो कर्म और उपासना, सेवा और सिमरन तभी तक सार्थक है जब तक ब्रह्म ज्ञान नहीं हुआ है। सेवा और सिमरन जो है फूल है, और ब्रह्म ज्ञान फल है। और वो जब ब्रह्म ज्ञान हो जाए मनुष्य को, सदगुरु की कृपा से और साधना से, तो मनुष्य का जो जीवन है वो आनंद से भर जाता है। और ब्रह्म ज्ञानी आप परमेश्वर, दोनों में कोई भेद नहीं रहता। आत्म चिनस परमात्म सोई, जो आत्मा को जान लेता है परमात्मा हो जाता है। आत्म चिनस भय निरंकारी, ऐसा गुरबानी में आया है। वो आत्मा को कैसे जाना जाए, इसके लिए गुरबानी में आया है, काहे रे बन खोजन जाई, सर्व निवासी सदा अलेपा तोहे संग समाई। पुहप मध्य ज्यों बास बसत है, मुकर माह जैसे छाई, तैसे ही हर बसे निरंतर घट ही खोजो भाई। बाहर भीतर एको जानो, एह गुर ज्ञान बताई, जन नानक बिन आपा चीने, सेल्फ को जाने बगैर मिटे ना भ्रम की काई, काहे रे मन खोजन जाई। ऐसा क्यों कहें गुरु महाराज ने? जो वस्तु दूर हो तो हम वहां जाएं, जिसको हम पाने के लिए चले हैं वो तो एवरी वेयर है। जो परमात्मा मक्का मदीना में है, जो हरमंदर साहेब में है, जो बनारस और हरिद्वार में है, वो यहां पर भी। और ऐसा नहीं कि उसके लिए कोई समय का इंतजार की जरूरत है। योग वासिष्ठ में वशिष्ठ जी राम जी को उपदेश करते हैं, हे राम, आंख को पलक मारने में देर हो सकता है, ब्रह्म ज्ञान में इतना भी देर नहीं होता है। यदि तैयारी हो, फल पका हुआ हो तो हाथ लगाने की देर होती, गिर जाता है। इसी तरह से सेवा और सिमरन किया हो और कोई ब्रह्म ज्ञानी संत मिल जाए तो इतने में काम हो जाता है। साथ संगत जी, जैसा के महापुरुष लोग बताते हैं, ब्रह्म ज्ञान है क्या? तीन अवस्था है, जागृत, स्वप्न, सुखोक्ति, तीन अवस्था। इसको बहुत ध्यान से सुनना। और एक चौथी अवस्था है जिसको तुरिया अवस्था कहते हैं, जिसको समाधि भी कहते हैं, निर्विकल्प समाधि, जहां चेतना शेष रहता है और कुछ भी नहीं होता है। जागृत अवस्था जो अवेकनिंग, ड्रीमिंग एंड साउंड स्लीप, ये तीन अवस्था हर एक के जीवन में गुजरता है। जब अवेकनिंग होता है तो ड्रीमिंग और साउंड स्लीप नहीं होता, एक होने पर दो नहीं होता। जब ड्रीमिंग होता है, जब आप स्वप्न देखते हैं, तो जागृत और गाढ़ी नींद नहीं होती, सुखोप्ति नहीं होती। और जब गाढ़ी नींद में होते हैं आप, तो हम स्त्री हैं, हम पुरुष हैं, हम साधु हैं, हम कथाकार हैं, हम कीर्तनीय हैं, हम क्या हैं, कोई पता नहीं होता, साउंड स्लिप में, तीसरी अवस्था में। चौथी अवस्था में क्या? कुछ भी नहीं। जब तीसरी तक नहीं जाती और हम कितनी कट्टरता में बैठे, हम ये हैं, हम ये हैं, हम ये हैं, और तीसरी तक नहीं जाता, समाधि में वो कहाँ जाएगा? एक अवस्था होने पर दो चीजें नहीं होती, लेकिन एक है जो तीनों में होता है, वो क्या है? वो है ज्ञान। जब आप जागे रहते हैं तो जागृत के सारे चीजों को जानते हैं, सब कुछ आप जान रहे हैं इस वक्त। आप स्वप्न में होते हैं तो स्वप्न के सारे संसार को जानते हैं, और जब आप साउंड स्लिप में होते हैं तो भी आप जागे रहते हैं और उठ करके कहते हैं, हमने बहुत गाढ़ी नींद में सोया और मुझको पता नहीं चला। मुझको पता नहीं चला, इसको कोई जानने वाला वहां था ना, वो कौन था? इस देही में कोई जागत रहे, गुरु महाराज उपदेश का, प्रत्येक के शरीर में कोई है जो ऑलवेज जागता, कभी सोता ही नहीं है, वो कौन है? वही है जिसकी खोज में आप चले हैं, जिसके बारे में गुरबानी माया, समय ज्योत ज्योत है सोए, तिसदे चानन समय चानन हो। वो जो ज्ञान है वही सत्य है, जो तीनों अवस्थाओं में रहता है, जागृत में भी रहता है, स्वप्न में भी रहता है, सुखोप्ति में रहता है, जिसका अभाव नहीं होता, जो ऑलवेज तीनों अवस्थाओं में जो प्रेजेंट रहता है, तीनों अवस्थाओं में जो सूत की तरह पिरोया हुआ है, उसी को तुरिया अवस्था कहते हैं। तुरिया अवस्था वखरा नहीं होता, ये चीज आज याद रखना आप लोग। जैसे जागृत है अवेकनिंग, जैसे ड्रीमिंग है, जैसे साउंड स्लीप है, ऐसे तुरिया अलग से नहीं होता। तीनों अवस्थाओं में जो धागे की तरह पिरोया हुआ है, उसी को तुरिया अवस्था कहते हैं। उस अवस्था को साक्षी भी कहते हैं, उस अवस्था को आत्मा भी कहते हैं। उसके लिए महापुरुषों ने हमें एक तरीका बताए हैं, क्या? कि आप अलग करते जाओ, हम शरीर नहीं हैं, हम इंद्रियां नहीं हैं, हम मन नहीं हैं, हम बुद्धि नहीं, सब को अलग करते जाओ, इसको, इस कपड़े को। सच्चाई तो ये शरीर कपड़ा है, लेकिन इस कपड़े को पकड़ करके हम कहते हैं मैं हिंदू हूँ, मैं सिख हूँ, ये कपड़े को पकड़ के, मैं काला हूँ, मैं गोरू हूँ, मैं स्त्री हूँ, मैं पुरुष, कपड़े को पकड़ के बोलते रहते हैं, मैं सुंदर हूँ, नहीं पता नहीं क्या क्या कुछ बोलते हैं सबको, इस कपड़े को पकड़ करके। और भगवान कृष्ण गीता में कहते हैं वांसां से जीर्णानि यथा विहाय, जब कपड़ा पुराना हो जाता है तो जीवात्मा इसको छोड़ के दूसरे कपड़े पा लेता है, जैसे हम लोग सारे करते हैं रोज, पुराना हो जाए या गंदा हो जाए छोड़ के दूसरा पहन लेते हैं। और इस कपड़े की सारी झगड़ी झगड़ा है इस कपड़े के कारण, पता नहीं, वस्तुतः तुम ये नहीं हो, इसके अंदर जो चेतना है वो तुम्हारा वास्तविक स्वरूप है, और वो जो चेतना है उसके लिए द रेट्रीट टू गो बैक, काहे रे बन खोजन जाई, सर्वनिवासी जो सब में निवास करता है, सब में निवास करता हुआ जो अलग रहता है, सर्वनिवासी सदा अलेपा तोहे संग समाई, पुहप मध्य ज्यो बास बसत, फूलों में जैसे खुशबू का बास दिखता नहीं है होता है, सारी लकड़ियों में अग्नि है दिखता नहीं लेकिन होता है। कोई ऐसा चाहे कि लकड़ियों को छोटा छोटा टुकड़ा करके अग्नि देखें तो मिलेगा? नहीं मिलेगा। सगल वनस्पत मह बैसंतर, सगल दूध में घिया, लकड़ियों को छोटा छोटा पीस कर लो और अग्नि ढूंढो तो मिलेगा नहीं लेकिन होता है उसमें। इसी तरह से प्रत्येक के शरीर में वो वाहिगुरु है, लेकिन इसको आप ये सोचो ना कि छोटा छोटा पीस करते शरीर को, जैसे बाबा मनी सिंह को जब बंद बंद काट रहा है तो बाबा मनी सिंह जी कहते हैं पहले वो ये काटने लगा, कहता है ये नहीं ये भी बंद है, एक एक बंद को काटो और इस कटने को तुम भी देखोगे हम भी देखेंगे। देखो इसका मतलब क्या है, बाबा मनी सिंह इस शरीर को सिर्फ कपड़ा समझते हैं और वो ये जानते हैं। फिर बाबा मनी सिंह क्या कहते हैं कि ऐ जल्लाद जिसको तू काट रहा है वो मैं नहीं हूं, और जो मैं हूं उसको तू काट नहीं सकता है। ये अवस्था सबकी आ जाए, कैसे, टू गो बैक, बाहर नहीं ढूंढना है। आप नड़े गिरवान में सिर नीवा कर देख, सिर नीवा कर देख, सभी लोग अपने जीवन को जांच कर ये फैसला कर दें, फैसला कर लें, क्या फैसला कर लें कि हे वाहे गुरु जो अंदर ज्योत है वो एक जैसी है क्या, एक ही है? एक जैसी में थोड़ा बहुत फर्क भी हो सकता है, आत्मा और परमात्मा एक जैसा है या एक ही है? सच्चाई है कि वो एक ही है, जब एक ही है तो बाहर नहीं ढूंढना है। आप नड़े गिरवान में सिर निवा कर देख, हे वाहे गुरु तेरी सूरत से नहीं मिलती किसी की सूरत, आपका जलवा आपका नूर आपका सौंदर्य जो फूलों में नदियों में पहाड़ों में बदलों के रूप में जो दिख रहा है बाहर। एक दिन हसन कहता है राबिया बाहर देखो कितने फूल खिले हुए हैं कितनी सुंदरता है, राबिया कहती है तू अंदर देख अंदर झांक, उसकी जो खूबसूरता है खूबसूरती है जो अंदर वाले की, उसके सामने तो बाहर एक कण भी नहीं। और हे हसन जो अंदर की खूबसूरती है उसी से बाहर खूबसूरत दिख रहा है, सब में ज्योत ज्योत है सोए, जहां जो जलवा देख रहे हो सब उसी की है। लेकिन ये अवस्था तभी आती है जब मनुष्य को ये विचार पैदा हो जाए, ये विवेक पैदा हो जाए कि मैं शरीर नहीं हूँ, मैं इंद्रियां नहीं हूँ, मैं मन नहीं हूँ, मैं बुद्धि नहीं हूँ, सब कुछ अलग करता हुआ दैट विच रिमेन्स ओनली, जो शेष बच जाता है चेतना, वही चेतना सत्य है, वही चेतना आनंद है, जिसके बारे में गुरु गोविंद सिंह जी महाराज कहते हैं सदा सच्चिदानंद सर्वं प्रणासी, वो सत्य है, उसकी कभी मौत नहीं होती। कीर्तम नाम कथे तेरे जीवा सत नाम तेरा परापुर वाला, वो जो सत्य है वो सत्य हिंदू के लिए सिख के लिए मुसलमान के लिए सबके लिए एक है। और वो सत्य कौन है? ओंकार है।
ओंकार को किसी ने नाम नहीं रखा है, ओंकार एक ध्वनि है। जब भी कोई व्यक्ति अंतर ध्यान होता है, अंदर चेतना में प्रवेश करता है और एकमिक हो जाता है, तो ये पाता है कि चारों तरफ ओंकार है। जब आप एकांत में बैठकर ओंकार की साधना करें इस रूप में कि लंबा यदि ओंकार का एक ओंकार का स्मरण करें, तो अपने को सब कुछ ओंकार में समर्पित कर दें और बीच बीच में देखें ये सब कुछ ओंकार है। वन तृण पर्वत है पार ब्रह्म, यह विश्व संसार तुम देख दे, ये हर का रूप है, हर रूप नदरी आया, सब गोविंद है, सब गोविंद है, गोविंद बिन नहीं कोई। लेकिन कब? जब पहले सबको अलग करके एक में प्रवेश कर जाएंगे, और प्रवेश क्या करना है, सिर्फ उसका दीदार, मिलिया होए ना बिछड़े जे मिलिया होए, एक बार एक ही प्रार्थना। यदि भक्ति करनी है तो एक ही प्रार्थना, हे वाहे गुरु, यदि तू देना ही चाहता है तो मुझे ये दे के देन, मुझे मांगने की कोई इच्छा ना रह जाए। कहते हैं कि जब दौलता दाई ने, उसके मन में बहुत मांग था पहले, कहता है कालू जब लड़का पैदा होगा ना, मुझे अनाज देना, मुझे कपड़े देना, मुझे ये देना, मुझे वो देना। और कहते हैं साध संगत जी, जब दौलता दाई ने साहिब श्री गुरु नानक देव जी महाराज का दीदार किया, उसने कालू पूछता है क्या चाहिए तुम्हें, उस वेले दौलता कहती है कालू ये बता मुझे क्या नहीं मिला है। दौलता कहती है कि मुझे अनंत जन्मों की जो प्यास थी वो बुझ गई है, अब मुझे कुछ चाहिए नहीं, कुछ भी नहीं चाहिए। हे वाहेगुरु के चरणों में यही मांगना है, हे सच्चे पातशाह देना ही है तो ये भावना दे दें कि आपके पास आके कुछ मांगो ही ना। कहते हैं कि जब बाबा नंद सिंह जी और बाबा जवंत सिंह जी जब दोनों भक्ति करने लगे, तो काफी समय भक्ति करने के बाद कुछ दीदार नहीं हुआ। बाबा जवन सिंह जी कहते हैं ये क्या है, हमने घर छोड़ा, बच्चे छोड़े, परिवार छोड़े, ना इधर के रहे ना उधर के रहे, क्या कोई जिंदगी है, दर्शन भी नहीं हुआ गुरु महाराज का। बाबा नंद सिंह जी कहते हैं फिर ऐसा करते हैं, हम दोनों संकल्प करते हैं कि जब तक गुरु नानक देव जी महाराज दर्शन नहीं देंगे, तब भोग अपने हाथों से नहीं लगाएंगे, और दर्शन नहीं देंगे तब तक कल हम कुछ खाएंगे पिएंगे नहीं। जब वो अपने हाथों से भोग लगाएंगे तो बाद में शीत प्रसाद छकेंगे नहीं, तो छकेंगे नहीं। संकल्प में बहुत शक्ति है, मन विचारों का केंद्र है, हृदय प्रेम का केंद्र है, नाभि संकल्प का केंद्र है, और 99% लोग मस्तिष्क में ही जीते हैं, उड़ते रहते हैं, विचारों में खेलते रहते हैं, विचारों से नहीं, नाप तोल से नहीं, इतना देर 10 मिनट जाप कर लिया, ये कर लिया, वो नहीं, एक दीवानापन, एक मस्ती उसके रंग में, जब तक आप नहीं रंगोगे वो बात बननी नहीं है, कंचन स्यों पाइए नहीं तोल। कहते हैं कि एक दिन हो गया, दो दिन हो गया, तीसरे दिन हो गया, चौथे दिन, पांचवें दिन, छठवें दिन हो गया, बाबा जवन सिंह गिर पड़े और कहते हैं अब तो मौत ही है, कोई बात नहीं, मर जाएंगे। कहते हैं सात संग जी छठवें दिन गुरु नानक देव जी महाराज दर्शन दिए। बाबा नंद सिंह जी कहते हैं जवंत तू देख, सामने देख, और कहते हैं कि तीनों लोगों की जो खुशियां हैं उसी क्षण उनको प्राप्त हो। गुरु नानक देव जी महाराज कहते हैं बाबा जवन सिंह जी को मांग ले, जो मांगना है मांग ले। कहते हैं सच्चे पातशाह यदि आप प्रसन्न हो तो जब मैं कीर्तन करूं तो आप हमें दर्शन दें, और बीच बीच में जो संगत आपके हैं इनको भी थोड़ा दर्शन दे दिया करें, और हमारी कोई मांग नहीं। कहते हैं ठीक है, हाँ भाई तुमको क्या चाहिए नंद सिंह तू बता। कहते महाराज हमें तो कुछ मांगने ही नहीं आता, कुछ तो मांग ले। जब तीन बार गुरु नानक देव जी महाराज कहते हैं कुछ भी मांग ले, कहते हैं महाराज यदि आप प्रसन्न हैं मेरे ऊपर तो आप हमें अपने चरणों में वास दे दें। गुरु नानक देव जी बड़े बहुत मुस्कुरा के कहते हैं नंद सिंह तू तो कहता मुझे मांगना नहीं आता और तूने सब कुछ मांग लिया, तू तो कहता है तू तो बहुत चलाक निकला जो है, कहता मांगना ही नहीं आता और ना मांगने कह करके तूने सब कुछ ले लिया। और कहते हैं सात संगत जी कुछ समय के बाद गुरु नानक देव जी महाराज फिर दर्शन दिए और कहते हैं तेरे पास कोई सर्टिफिकेट है? महाराज मुझे पता नहीं चला कोई नहीं, तुमने गुरु धारण किया है कोई? उसी वेले आकाशवाणी हुई और बाबा हरनाम सिंह जी बुच्चे वाले वहां जाकर के उन्होंने जो एक झीना सा पर्दा था एक मर्यादा थी उसको पूरा करके उन्होंने उस अवस्था को प्राप्त किए। आज ये जो संप्रदाय है न्यू नानक सर बाबा जी के अंदर वही चीज मैं जो देखता हूं जो इब्राहिम ने 14 साल कदम कदम पर नमाज पढ़ के नहीं पाया और राबिया ने हलीमी और बेखुदी से पाया, ये दोनों गुण बाबा जी में ये दास पाता है। बाबा जी की महिमा मैं शब्दों में नहीं कर सकता, आप लोग खुद अनुभव करते हैं। साथ संगत जी सच्चाई तो ये है एक ही चीज के सत्य की प्यास, सत्य की प्यास पैदा करो और उसके लिए कोई भी कीमत चुकाना पड़े उसके लिए चुकाने की तैयारी हो हमेशा। बुझदिली से काम नहीं चलती, बुझदिली नहीं, बुझदिली नहीं। कहते हैं विवेकानंद जी को आधी रात को वो नदी पार करके गए और रविंद्रनाथ टैगोर के पिता थे उनका दरवाजा खटखटाए। कहते आधी रात को तू आया है? कहते हाँ आया, किस लिए आया है? मुझे दीदार चाहिए। कहते ठहर जा सुबह आराम कर। सात संगत जी उसी वक्त उसने नदी में कूद गया फिर आ गया बाहर, फिर चैन ने फिर वो नदी के पार गया। वहां पर स्वामी रामकृष्ण परमहंस एक कुटिया में रहते थे, उसको चैन नहीं था, एक मिनट बैठता नहीं था नरेंद्र, उसका नरेंद्र नाम था पहले विवेकानंद का। जैसे कोई आग लग जाए चारों तरफ है तो विचार करते हैं कल परसों महीने के बाद निकलेंगे बाहर। जब हमको मौत नजर आ रही हो दो बातों को भूल मत, जो चाहे कल्याण नारायण एक मौत को दूजो श्री भगवान। मौत को याद रखने से पाप नहीं होता व्यक्ति के अंदर और नारायण को याद करने से कल्याण होता है। नरेंद्र पार करके गया दरवाजा खटखटाया, स्वामी रामकृष्ण परमहंस दरवाजा खोले, कहते हैं तो आ गया है, मैं तुमको इंतजार कर रहा था, क्या चाहिए? उसने भूल ही गया वहां पर और उसके मस्तक पर हाथ रखे स्वामी रामकृष्ण परमहंस बस उसी के होके रह गए। किसी का या तो हो जाओ, किसी को बना लो या किसी का बन जाओ। और ये गुरु महाराज कह रहे संत संग अंतर प्रभ निठा, संत शरण जो जन परे सो जन उधरनहार। अपने से नहीं, जो ब्रह्मंडे सोई पिंडे जो खोजे सो पावे पीपा प्रणवे परम तत्व है, सतगुर होए लखावे। अपने से नहीं, जैसे एक दीपक बुझा हुआ दूसरे का कुछ भी नहीं भला कर सकता, एक जली हुई मोमबत्ती हजारों को जला देगी और उसका कुछ घटता नहीं है, तो बाबा जी जली हुई मोमबत्ती हैं, आप लोग इनके साथ लग के आप भी जल जाएं, ये हमारी शुभ कामना है। और दास को वाणी पढ़ते कथा करते किसी प्रकार की कोई गलती हो तो आप क्षमा करेंगे। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।